श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 11। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और आगे आने वाले जो श्लोक होंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं अगर हम भगवान की भक्ति में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। श्रील प्रभुपाद जी ने इस पर बहुत विशद टीका लिखी है और उसकी एक एक लाइन को हम चर्चा करेंगे। हो सकता है कि ये दो भाग में हो लेकिन हम प्रयास करेंगे। तो इसमें पहले हम श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका को देखेंगे और फिर प्रभुपाद की टीका को समझने का प्रयास करेंगे। तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो महापुरुष कारणों दशाए विष्णु हैं, जिनका सच्चिदानंद स्वरूप है और जिन्होंने अपने आप को अनंत कोटि या हजारों हजारों, अनंत तो नहीं कह सकते लेकिन हजारों हजारों ब्रह्मांड में विस्तारित किया है, जो ब्रह्मांड का सृजन करते हैं वो स्वयं भगवान कृष्ण के ही अंश हैं, कृष्णा के स्वांश हैं। यानी भगवान कृष्ण ही महापुरुष महाविष्णु के रूप में हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं भगवान की निंदा करते हुए कि जब आप वसुदेव के पुत्र के रूप में आते हैं और नराकृति रहती है तो वो नराकृति मात्र महाविष्णु का अंश मात्र है। तो आप समझ रहे हैं महाविष्णु भगवान कृष्ण के अंश है। विष्णुर महान स इह कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये जो महाविष्णु हैं ये भगवान कृष्ण के कलांश हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान विष्णु के कला अंश जो हैं वो भगवान कृष्ण हैं, तो इस बात को समझ नहीं पाते, वो भगवान के परम भाव को नहीं समझ पाते। तो इस संबंध में भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान कहते हैं हाँ ये सत्य बात है कि जब भगवान एक मनुष्य के रूप में या मनुष्य अपनी मानव नराकृति को प्रस्तुत करते हैं, ऐसे कहना चाहिए, तो जो प्रायः अज्ञानी लोग हैं वो भगवान का उपहास करते हैं। वो ये नहीं जानते कि भगवान का जो नराकृति रूप है, विग्रह है, उसका एक परम भाव है। वो परम भाव है, वो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, वो भगवान का खुद का स्वरूप है और वो कारणवशाई यानी महाविष्णु के स्वरूप से भी श्रेष्ठ है और अधिक आकर्षक है और अन्य जितने विष्णु स्वरूप हैं उनसे भी अधिक आकर्षक है। तो प्रश्न व्यक्ति कर सकता है कि ये रूप है किस प्रकार का, तो वो कह रहे हैं भगवान महेश्वरम यानी कि वो सभी वस्तुओं के कंट्रोलर हैं, ईश्वर हैं। रूप दिख रहा है सामान्य इंसान की तरह लेकिन वस्तुतः उस रूप वो रूप भगवान श्री कृष्ण का रूप जो है यानी भगवान है वो पूरे जगत को कंट्रोल कर रहे हैं। भगवान का लिए जो शब्द यहाँ पे यूज आ रहा है महेश्वर, ये ब्रह्मन को भगवान को ब्रह्म से अलग करता है क्योंकि ब्रह्म किसी का कंट्रोल नहीं करता, ये ध्यान देना चाहिए। ब्रह्म के लिए शब्द आया था भूतम, मम भूत महेश्वरम। भूत का यानी कि प्रत्येक वस्तु का नियंत्रण करने वाले हैं भगवान और महाईश्वर है अर्थात उनको कोई कंट्रोल नहीं करता है। इसमें वो समझाते हैं कि अमरकोश शब्दकोश के अनुसार भूत शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, जैसे सत्य या फिर इसका अर्थ हो सकता है पृथ्वी। तो जो भी हम आप उसका उत्तर आप ले सकते हैं। श्रुतियों में कहा गया है तमेकम गोविंदम सचिदानंद विग्रहम वृंदावन सुरभुरुहु भावनासीनम सततम स मरुद्गणोहम परमयास्तुतया तोषयामि। तो इसमें ये तपा गोपाल तापनी उपनिषद का श्लोक है, इसमें बोल रहे हैं कि मैं उन गोविंद को संतुष्ट करने का प्रयास करता हूं मरुदगणों के साथ जो एक कल्प वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। तो स्मृति शास्त्र कहते हैं नराकृति परब्रह्म, जो परब्रह्म है वो नराकृति है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इंसान, एक इंसान लोग किसी इंसान जिसका नाम कृष्ण था उसको भगवान की संज्ञा दे दिए हैं, ना, भगवान का शाश्वत स्वरूप नराकृति के रूप में है। और ये विष्णु पुराण के 4.11.2 से कोट किया गया है। तो जो भगवान के भक्त हैं, जो ज्ञानी भक्त हैं, ज्ञानी अर्थात जो जानते हैं भगवान के स्वभाव को, वो इस नराकृति को सच्चिदानंद स्वरूप के रूप में प्रस्तुत करते हैं या समझाते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण के बारे में ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो आप देख रहे हैं ईश्वर पर और यहाँ पे आ रहा है महेश्वर और सच्चिदानंद विग्रह, तो यहाँ पे आ रहा है परम भाव। तो भगवान का परम भाव का अर्थ क्या है? भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है और यही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का अर्चा विग्रह भी है। इसीलिए अर्चा विग्रह को बार बार देखने से व्यक्ति का हृदय का अज्ञान नष्ट हो जाता है। इस जगत के रूपों को देख करके हमारा ज्ञान नष्ट नहीं होता है, लेकिन भगवान के विग्रह की सेवा करके उनको देख के देख के देखते देखते हमारा अज्ञान हृदय का नष्ट हो जाता है, अविद्या नष्ट होती है। क्या भगवान से संबंधित कुछ भी है, चाहे उनके गुण हो, रूप हो, लीला हो, उनका संपर्क में आने से व्यक्ति आनंदित होता है और उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है। इस चीज को या भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को जो बचपन में माता यशोदा ने देखा था, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त था, देख रही छोटे बच्चे को लेकिन देखने की पूरा ब्रह्मांड उस छोटे बच्चे के अंदर है। तो ये भगवान के इस विग्रह की बड़ी विशिष्टता है जो एक सामान्य रूप में नहीं होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, कुछ लोग कहते हैं कि परम सत्य ये जो है ये तो इसकी आकृति कैसे हो सकती है, क्योंकि जैसे ही किसी की आकृति होगी तो उसकी लिमिट होगी, लेकिन परम सत्य तो लिमिटलेस यानी कि अनंत होना चाहिए। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं ऐसे लोग कि ये जो लिमिटेशन है, ये जो बाध्यता है, ये एक भौतिक रूप के ऊपर होती है, लेकिन आध्यात्मिक रूप जो भगवान का है सच्चिदानंद स्वरूप, ये स्वरूप होते हुए भी अनंत है। ये हमें स्वीकार करना होगा वैदिक शास्त्रों के आधार पर। अब परम भाव का एक और अर्थ वो करते हैं। पहला अर्थ ये था कि ये जो भगवान का स्वरूप है वो महाविष्णु से श्रेष्ठ है। अब दूसरा अर्थ क्या है जरा देखिए, वो कह रहे हैं मानुषिम तनुम। तो भगवान का ये जो नराकृति रूप है वो परम भावम यानी कि बहुत ही श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। वस्तुतः वो विशुद्ध सत्व में स्थित है और उनका स्वरूप सच्चिदानंद है। तो यहाँ पे परम भाव का अर्थ ये है कि भगवान का जो स्वरूप है वो भौतिक नहीं है अपितु सच्चिदानंद है। अमरकोश शब्दकोश के अनुसार भाव का अर्थ स्थिति भी होता है, एक व्यक्ति का स्वभाव होता है या उसकी इच्छा, उसको भी हम भाव कहते हैं। तो यह है भगवान के परम भाव को यहां पे प्रस्तुत किया गया है। भगवान की परम स्थिति, भगवान का परम स्वभाव और भगवान की परम इच्छा, ऐसे आप कह सकते हैं। तो भगवान यहां पे अपने को समझाए हैं महेश्वर अर्थात ब्रह्मा आदि जीवों के भी वो नियंता हैं। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि अन्य जीवात्माओं से भिन्न है, क्योंकि जीवात्माओं का शरीर सूक्ष्म स्थूल उनसे, जीवात्माओं से भिन्न होता है। ये हमने कई बार सुना है कि जीव अपने शरीर से, सूक्ष्म स्थूल शरीर से भिन्न है, लेकिन भगवान परम भावों को प्राप्त हैं, प्राप्त है तो नहीं कहना चाहिए, परम भाव है उनका, अर्थात उनका शरीर, उनका जो स्वरूप है वो उनसे अभिन्न है, पूरी तरह से स्पिरिचुअल है। तो यानी कि भगवान का शरीर ही भगवान है, ये समझ में आना चाहिए। तो ये ज्ञान, वैदिक ज्ञान जब भक्त को प्राप्त होता है तो फिर उसका कंसेप्शन, सिद्धांत समझ से ठीक से समझ पाता है। तो इसको श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने भी समझाया है कि भगवान का शरीर जो है वो साक्षात ब्रह्म है, शब्दम ब्रह्म दधाद वपुः। सतयुग में ये श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय से 8वें श्लोक से कोट किया गया है कि सतयुग में भगवान प्रसन्न होकर के अपने आप को कर्दम मुनि को दिखाते हैं और वो दिव्य स्वरूप जो कि वेदों के द्वारा समझा जाता है। तो इस चीज को भक्तों के द्वारा ही समझा जा सकता है क्योंकि भक्त लोग भगवान से द्वेष नहीं करते हैं। अब हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखते हैं, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये कमेंट्री। तात्पर्य को देखिए, इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता हो वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो यानी कि कुछ लोग मनुष्य मिलकर के भगवान को भगवान घोषित नहीं करते हैं, भगवान भगवान ही रहते हैं। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते और ऐसा लगता है कि वो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। जैसे वो लोग कहते हैं कि अरे भाई भगवान, या भगवान तो नहीं बोलते, कहते हैं कृष्ण एक आदर्श गृहस्थ थे, अर्थात एक मनुष्य थे लेकिन आदर्श थे। तो ये गलत है, भगवान कृष्ण भगवान है, एक सामान्य मनुष्य बिल्कुल नहीं है। और ऐसा मानना ये मूर्खता का लक्षण है। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है, ईश्वर परम कृष्णा, वे परम ईश्वर हैं। इस संबंध में छोटी सी घटना है। मैं हम कॉलेज प्रचार के लिए गए तो एक व्यक्ति मिले और उन्होंने बोला कि राम ने, भगवान शब्द यूज नहीं किया, उन्होंने बोला राम क्षत्रिय हैं, आपने बोला कि मांस नहीं खाना चाहिए, तो फिर उन्होंने हिरण का शिकार क्यों किया। तो मैंने सीधे पहले उनसे प्रश्न किया, क्या आपको विश्वास है कि राम भगवान है? मैंने कहा नहीं। हमने कहा आपको विश्वास है कि क्या राम हुए भी थे? कहते नहीं। उनको ये भी विश्वास नहीं था कि भगवान राम हैं। तो फिर मैंने कहा फिर ऐसे कपोल कल्पना की चर्चा करने से क्या फायदा? आप उदाहरण के द्वारा सिद्धांत को समझना चाहते हो लेकिन वो उदाहरण तो कल्पना से युक्त है। अगर आपको यही विश्वास नहीं है कि भगवान राम हैं या राम थे भी, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो चुप हो गए। तो इसलिए इसको कहते हैं अर्ध कुकुट न्याय, शास्त्रों की बात को खाली आधा स्वीकार करना। तो भगवान को तत्व में हम समझते हैं भगवद गीता के द्वारा, फिर भगवान की लीला चाहे भगवान राम के रूप में हो या भगवान कृष्ण के रूप में हम ठीक से समझ पाएंगे। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई ना कोई निर्देशक होता है जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उसके भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं किंतु कृष्ण परम नियंता है, ईश्वर परम कृष्णा, तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। तो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक बार हमारे टीचर से पूछा गया था कि भगवान कौन है, तो उन्हें बड़ा सिंपल उत्तर दिया और उत्तर ये था कि जो किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं हो और सबको नियंत्रित करता हो। ये भी इंटरेस्टिंग है कि भले ही कोई व्यक्ति किसी के द्वारा नियंत्रित ना हो लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हो जाता है कि वो सबको नियंत्रित करता है। तो भगवान किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं और सबको नियंत्रण में रखते हैं, ये भगवान का बड़ा स्पेशल गुण है और वो भगवान है कृष्ण। तो ये भगवान की स्वरूपगत डेफिनेशन है। कोई अगर चैलेंज करे नहीं कृष्ण ही क्यों है और कोई नहीं, तो चैलेंज कर सकता है लेकिन इस चैलेंज से कृष्ण के स्वामित्व को, कृष्ण की आधारभूत भगवत्ता को, स्वराटता को वो खत्म नहीं कर सकता क्योंकि उसका खुद का अस्तित्व भगवान के ऊपर आश्रित रहता है। तो ये बात समझ में आना चाहिए। तो हमने समझा भगवान श्री कृष्ण किसी को द्वारा भी नियंत्रित नहीं होते हैं और वो स्वयं सबको नियंत्रित करते हैं। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। थोड़ा सा आपको याद दिलाऊंगा, कार्यकलाप का अर्थ है पूरे जगत की सृष्टि करना, सहार करना, पालन करना और फिर भी इनमें निर्लिप्त रहना और खुद अपनी इच्छा से किसी और की मदद के बिना भगवान ने सब किया। तो ये सब एक भौतिक शरीर के द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषिम कहा गया है क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति समान व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से समान पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप है। वेदों में ऐसे अनेक ऐसे अन्य वर्णन भी हैं। तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ से आप उदाहरण से आप समझ पाएंगे, भगवान यहाँ पे अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं और एक मनुष्य की लीला, मनुष्य की भांति लीला करते हैं, लेकिन जो वो कार्य करते हैं वो एक सामान्य मनुष्य भी नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा भगवान लीला करते हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसे मैं जो याद है, मैं जब कॉलेज में था तो मैं एक ड्रामा का डायरेक्टर था, तो जो व्यक्ति मेरे मित्र भीष्म देव बने थे, वो उनका इतना सुंदर मतलब उनका ड्रेसअप मेकअप हुआ था कि कुछ क्षणों के लिए मैं ही नहीं पहचान पाया था कि व्यक्ति है कौन। तो ये अद्भुत होता है। तो जो सोचिए, एक मेकअप आर्टिस्ट भी इस प्रकार से कर सकते हैं कि व्यक्ति पहचान ना पाए कि वो है कौन और इतना सुंदर अभिनय करते हैं। तो भगवान के पास तो इस क्रिया को करने की अचिंत शक्ति है और अनंत शक्ति है। तो भगवान जब यहाँ पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि मानव कितने कार्य कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो पांडवों का पक्षपात कर रहे हैं और दुर्योधन से वैर कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वो सबके प्रति समान भाव रखते हैं, वो सभी के वो हितैषी हैं। और जो व्यक्ति भगवान के इस परम स्वभाव को नहीं समझता है, ये नहीं समझता कि भगवान का रूप जो है सच्चिदानंद है, वो व्यक्ति भगवान की निंदा करता है और ऐसा व्यक्ति मूर्ख कहा गया भगवान के द्वारा। तो देखिए, भगवान के बारे में व्यक्ति ना जाने वो एक बात है, लेकिन ना जानने के बाद उसको स्वीकार नहीं करना कि मैं भगवान के बारे में नहीं जानता हूं और फिर अज्ञान के आधार पर भगवान का उपहास करना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। जैसे आपको पता हो या नहीं, जरासंध भगवान विष्णु का उपासक था, लेकिन भगवान कृष्ण का वो उपहास करता था, उनका उनसे वो द्वेष करता था। तो इस प्रकार की लोगों को मुक्ति प्राप्त नहीं होती, ये आगे चर्चा आएगी। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथा कथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं, भले ही वे अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, भगवान के अरेंजमेंट है कि जो अच्छे कर्म करते हैं लोग तो उनको बुद्धि मिलती है, उनको रूप मिलता है, धन मिलता है, लेकिन ये भौतिक योग्यताएं भगवान को समझने के लिए पूरी तरह से नगण्य हैं, इनका कोई आधार नहीं है। भक्त्या श्रुतग्रहीतया, भक्ति भावना से और वैदिक ग्रंथों को प्रामाणिक गुरुजनों के मुख से, वैष्णवों के मुख से सुनता है व्यक्ति, तब व्यक्ति भगवान के बारे में ठीक ठीक समझ पाता है। श्रद्धा का महत्व है, ज्ञान का उतना महत्व नहीं है। अगर हम शुष्क ज्ञानियों से, जिनको भगवान कृष्ण पर विश्वास नहीं है कि वो भगवान है, उनकी टीकाओं को पढ़ेंगे तो भगवान को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वह मूढ़ कहलाता है, मतलब विद्वान होते हुए भी मूर्ख कहलाता है, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। क्या कोई सामान्य पुरुष एक पर्वत को उठा सकता है? नहीं उठा सकता। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। क्यों अपरिचित होते हैं? क्योंकि एक वैष्णव के चरणों का आश्रय लेकर के उसको सुनते नहीं है। वे ये नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। तो ये ध्यान देना चाहिए कि भगवान कृष्ण किसी को भी मुक्ति दे सकते हैं, उनका नाम मुकुंद है, लेकिन भगवान के परिहास करने वालों को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। ये ध्यान देना चाहिए। तो भगवान को इसको आगे गीता में भगवान बताएंगे। तो व्यक्ति मूर्ख है अपने ही गलत संगत की वजह से। विद्वता अगर हो और भक्त का आश्रय ले, प्रामाणिक परंपरा में इस ज्ञान को प्राप्त करे, तो भगवान को समझ सकता है। एक सिंपल सी बात समझिए कि अगर कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, लेकिन जब तक उसकी माता नहीं बताती है, तब तक वो इस जन्म के पिता के बारे में नहीं जान सकता है, क्योंकि उसका जन्म नेचुरली अपने पिता के बाद हुआ है। उसी प्रकार से कितना भी व्यक्ति विद्वान हो, वो भगवान के बारे में नहीं जान सकता है जब तक भगवद गीता रूपी माँ का आश्रय न ले और उस भगवद गीता को भी परंपरा में स्वीकार न करे। जब तक वो परंपरा में इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करता है, तब तक वो भगवान को बिल्कुल नहीं जान पाएगा। इस चीज को भगवान ने स्वयं चौथे अध्याय में बताया था, एवं परंपरा प्राप्तम। तो भगवद गीता का ज्ञान परंपरा में प्राप्त किया जाना चाहिए, तभी ये कार्य करता है। यह मूड भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले थोड़ा पढ़ेंगे फिर समझाएंगे। वे भौतिक शक्ति या माया के स्वामी हैं, जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है, मम माया दुरत्तया। यहाँ एक शब्द है, मानुषिम तनुमाश्रितम। हाँ, देखिए, जब कोई एक जेल में एक कैदी आता है, तो वो सरकारी गाड़ी में आता है और उसके सब तरफ पुलिस वाले होते हैं, लेकिन उसके हाथों में कड़ी होती है और वो जेल में अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, अपितु अपराध करने के कारण उसको जेल में लाया जाता है। कभी कभी विजिट करने के लिए, बहुत रेयरली, कभी कभी को विजिट करने के लिए कोई चीफ मिनिस्टर या कोई बहुत बड़ा अधिकारी आता है जेल में कि भाई देखें जेल कैसी चल रही है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, तो वो भी सरकारी गाड़ी में आता है और उसके भी चारों तरफ पुलिस वाले होते हैं, लेकिन उसके हाथ में कड़ी रही होती है। वो अपनी इच्छा से जेल में आता है जेल को व्यवस्था को देखने के लिए, बल्कि उसकी ही इच्छा से जेल चल रही है, और जब उसकी इच्छा होती है तो जेल से वो बाहर चला जाता है। अभी तो आप जानते भी होंगे कि चीफ मिनिस्टर अगर कोई आता है जेल में, तो जेल को बहुत साफ सुथरा रखा जाएगा। तो उसी प्रकार से जब भगवान इस जगत में आते हैं, तो जो प्रकृति है वो अपने आप को बहुत सुंदर सजा लेती है, जैसे एक पत्नी अपने पति के आगमन पर अपने को सुंदर से सजा कर रखती है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन किया गया है। तो जो मूर्ख लोग हैं वो सोचेंगे जब भगवान आते हैं तो वो भी अपने कर्मों के अनुसार आते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं भगवान कृष्ण को शाप लगा था, इस कारण से उनका पूरा वंश जो है वो ध्वंस हो गया था। नहीं, भगवान की खुद की इच्छा से भगवान ने अपने सारे पार्षदों को वापस अपने धाम में भेज दिया। तो ये ध्यान देना चाहिए कि भगवान भौतिक शक्ति के स्वामी हैं और हम नहीं हैं, और उस भौतिक शक्ति के ही प्रभाव में लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। मम माया दुरत्या, भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल आता है। इसको समझ में आना चाहिए। एक महाराज बता रहे थे कि जब वो भक्त नहीं थे छोटेपन में, तो वो अखबार हॉकर का काम कर रहे थे, अखबार बांटते थे। तो एक घर में गए अखबार देने के लिए, तो उस घर में बड़ा भयानक कुत्ता था। तो उस कुत्ते ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, तो उनने वहां के कुत्ते के मालिक को चिल्लाया या पुकारा। तो जब उनने कुत्ते के मालिक को पुकारा, तो कुत्ते के मालिक ने एक सीटी बजाई और उससे वो कुत्ता वापस आ गया, उनको घायल नहीं किया, अटैक नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि खुद उनमें उस भयानक कुत्ते से युद्ध करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन मालिक की एक सीटी मात्र से वो कुत्ता वापस चला गया। उसी प्रकार से माया से लड़ने की शक्ति जीव में नहीं है, केवल शक्ति इतनी है कि हम कृष्ण को पुकार सकें, और कृष्ण इस पुकार का ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम पुकारेंगे और भगवान देखेंगे नहीं, अरे बहुत लंबी लिस्ट है, इसके बाद पहले क्लियर करो, बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं, लॉग में लगे हुए हैं, पूल में हैं, और उसके बाद आपका नंबर आएगा। नहीं, हर जीवात्मा के लिए भगवान आतुर हैं कि ये बस मेरी तरफ उन्मुख हो जाए, और फिर भगवान उसको माया से मुक्त कर देते हैं। माया से भगवान करते हैं, हम स्वयं नहीं हो सकते। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकते हैं। तो इस उदाहरण को आप समझ रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण के शरण लेकर के व्यक्ति इस जगत से मुक्त हो सकता है, तो ये समझना चाहिए कि भगवान जो कि इस जगत की सृष्टि कर रहे हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये बहुत सिंपल सी बात है। बहुत से लोग कहते हैं कि कृष्ण बहुत कामी थे, इतनी सारी स्त्रियां रखे। नहीं, ये मूर्खता है। भगवान कृष्ण पूरी तरह से काम इत्यादि से ऊपर है, उनको छू भी नहीं सकता काम। अपितु जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, उनको भी काम इत्यादि सब चीजें परेशान नहीं करता है। तो ये सारी धारणाएं भगवान का परिहास है, और ये बहुत बड़ा अपराध है। अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि समान व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह से हो सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है, अतः श्री कृष्ण नामाधि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोर मुखे ही जीवदौ स्वयमेव स्पर तथा। कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, उसकी इंद्रियां भौतिक होती हैं, और इन भौतिक इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से भगवान को समझना संभव है। लेकिन जब जीव को भगवान की सेवा में लगाते हैं, उनका नाम उच्चारण करने में और उनका प्रसाद ग्रहण करने में, तब भगवान प्रसन्न होकर के हृदय में भक्त के इस ज्ञान को प्रकट करते हैं। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होता है, अतः वे यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। बहुत सुंदर बात है। जो व्यक्ति बहुत बड़ा है, वो बहुत छोटे को कैसे कंट्रोल करेगा, और जो बहुत छोटा है, वो बहुत बड़ी वस्तु को कैसे कंट्रोल करेगा। दोनों ही परस्पर विरोधास्पद गुण हैं, लेकिन भगवान के अंदर सारे विरोधास्पद गुण का समन्वय हो जाता है। ये ध्यान देना चाहिए। तो भगवान विशाल स्तर पर बात करें तो अनंत ब्रह्मांडों को भी अपने नियंत्रण में रखे हैं, और एक छोटे से छोटे अणु को भी अपने नियंत्रण में रखे हैं। तो ये भगवान की अचिंत शक्ति है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। विलग रहते हैं, हमने पहले भी चर्चा किया था कि वो आसक्त नहीं होते, लेकिन सब कुछ उनकी शक्ति से होता है, इच्छा से होता है। उनके योगम ऐश्वर्यम या अचिंत दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम और असीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान हैं। अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं, और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। तो भले ही भक्त अपनी बुद्धि के द्वारा समझ नहीं पाए, लेकिन उसको भगवान की वाणी पर श्रद्धा होती है, और इस श्रद्धा के अनुसार ही व्यक्ति के हृदय में ज्ञान उदित होता है। इसको हमने 9.12 में चर्चा किया था। श्रद्धावान लभते ज्ञानम भी हमने चर्चा किया है 4th अध्याय में। तो भगवान पे विश्वास, वाणी पे विश्वास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही हम उसको अपने इंद्रियों से न समझ पाए, हमारी इंद्रियां अलग इन्फॉर्मेशन दे रही हों, लेकिन भगवान जो बोल रहे हैं उस पर विश्वास करना चाहिए। जैसे भगवान का विग्रह होता है तो वो सच्चिदानंद है, भले इस समय हमें समझ में नहीं आए। जब हम उसको इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर एक दिन प्रकट करेंगे कैसे भगवान का स्वरूप सच्चिदानंदमय है।